الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين میرے شیخ میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکات بلا لیا حضرت والا نے حضرت والا سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری روحانیت میں ترقی ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے روحانیت کو اڑانے کا طریقہ کیا ہے تو میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ روحانیت اڑانے کا وہی طریقہ ہے جو جہاز اڑانے کا طریقہ ہے فوراً برجستہ فرمایا کہ روحانیت کا وہی طریقہ ہے جو جہاز کا طریقہ ہے تو پوچھا حضرت وہ کیسے تو پہلے میرے خیال میں ذرا کچھ روحانیت کا تعارف ہو جائے کہ روحانیت کہتے کس کو ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک دفعہ یہاں پر ایک صاحب آئے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ یہ صاحب روحانیت سے ناواقف ہے تو میں نے پوچھا روحانیت کہتے کس کو ہے روحانیت ہے کیا چیز تو آپ یہاں باہر جائیں گے تو آپ کو ایک مکسچر مشین نظر آئے گی رکھی ہوئی تو کہنے لگے کہ مثلا روحانیت یہ ہے کہ مشین کو اٹھا لوں میں اور ہوا میں اڑنے لگوں پانی پہ چلنے لگوں تیرنے لگوں اور زمین میں گھس جاؤں میں نے کہا یہ وزن اٹھانا یہ تو گدھوں کا کام ہے مولوی فخر الدین ادھر آگے بیٹھو ہاں یہ جگہ ہے نا میں نے کہا وزن اٹھانا یہ تو گدھوں کا کام ہے ہوا میں اڑنا وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے پانی پہ تیرنا چلنا یہ تو تنکا بھی تیرتا ہے اور زمین میں گھسنا تو چھچندر بھی زمین میں گھس جاتی ہے میں نے آپ کون سا مقام چاہتے ہیں اب وہ ہنسنے لگے کہتے تم نے تو ہماری روحانیت کا کی دھجیاں اڑا دی میں نے کہا تمہاری روحانیت کی تو واقعی جس کو تم نے روحانیت سمجھا تھا ظالم تو نے تو پہلے روحانیت کی دھجی اڑا دی کہ روحانیت کس کو کہتے ہیں تو اب وہ کہنے لگے کہ پھر بھائی روحانیت کہتے کس کو ہے کیونکہ بوجھ ان کو نہیں اٹھانے دیا ہوا میں انہیں نہیں اڑنے دیا پانی میں انہیں نہیں تیرنے دیا زمین میں انہیں نہیں گھسنے دیا تو اب وہ روحانیت کہاں سے لائے اب آئے لائن پر پوچھتے کہ روحانیت کہتے کس کو ہیں میں نے کہا اب تم نے سوال کیا اب پوچھنے والی بات ہے تو میرے دوستو روحانیت در حقیقت ہمارے قلب و جان کے اس تعلق کا نام ہے اس کنیکشن کا نام ہے جو بندے کو اللہ تعالی سے اطاعت و فرما برداری کا ہو اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے عنایت و مہربانی کا ہو یہ اس کنیکشن کا نام ہے اس تعلق کا نام ہے اور اس تعلق کو نبھانے کی خاطر سے اپنے دل کو توڑ دے اپنی جان پر صبر کر لے اپنی خواہشات کا خون کر لے اپنے دل پر غم اٹھا لے لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کو ایک لمحہ اور ایک سانس ناراض نہ کرے در حقیقت روحانیت اس تعلق کا نام ہے میاں سامنے جگہ ہے کیوں اتنی دور جا کے بیٹھ جاتے ہو हाँ और थोड़ा इधर हो जाओ, लेकिन दूर मत बैठा करो। मेरे मुर्शिद के शेर है, फरमाते हैं, अशआर है कि खुशी पर उनकी मरना और जीना ही मोहब्बत है, खुशी पर उनकी मरना और जीना ही मोहब्बत है, न कुछ परवाह बदनामी न कुछ परवाह आलम है। कि बंदा अल्लाह की रजा और खुशी के लिए अपने दिल को तोड़ दे, अपने दिल पर सब्र कर ले, अपनी ख्वाहिशात का खून कर दे, लेकिन मजाल नहीं किसी हसीना को निगाह उठाकर देखे, चाहे वो कितनी जबरदस्त हसीना हो और कितनी उसकी टांग खुली हुई हो। क्योंकि ऐसे ममालिक भी हैं और हमारे दोस्त ऐसे मुल्कों में रहते भी हैं जहां हसीना नंगी टांग खोलकर, टांग पर टांग रखकर, नाक पर चश्मा रखकर किताब पढ़ती रहती है। वो बुक रीडिंग करते हैं और ये फेस रीडिंग करते हैं, और ये इन हालात को इनको फेस करना पड़ता है, ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है, और वो टांग हिलाती भी रहती है। अब यार लोग, जाहिर बात है, अब एक टांग पर दूसरी टांग, वो कहते हैं इधर एक सुपर हाईवे भी जा रहा है, वो उस सुपर हाईवे पर अपनी गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं, ख्वाहिशात का ऐसा तूफान, लेकिन आह रूहानियत का ही आलम है, हसीना कितनी नंगी टांग खोले हो, कितनी ही अपने आप को, बल्कि मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि वो मुफ्त में पेश करें, लेकिन अल्लाह की बंदगी और अल्लाह ताला से ताल्लुक और रूहानियत इसकी चीज का नाम है कि हरगिज़ चाहे हुस्न मुफ्त में हो, लेकिन यही जवाब होना चाहिए कि तेरा हुस्न तो मुफ्त में है लेकिन मेरा ईमान मुफ्त का नहीं है। इस रास्ते, इस ताल्लुक और इस कनेक्शन का नाम रूहानियत। और सिर्फ ये ऐसा नहीं कि ये ताल्लुक और ये कनेक्शन मस्जिद में हो, मदरसे में हो, तबलीग में हो, शेख की खानकाह में हो और अपने दोस्तों, नेक दोस्तों के साथ हो, ऐसा नहीं, बल्कि मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि मैं जहां भी रहूं, जिस फिजा में रहूं, मैं जहां भी रहूं, जिस फिजा में रहूं, मेरा तकवा हमेशा सलामत रहे। चाहे वो बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हवाई जहाज हो, खानदान बरादरी की तकरीब हो और खानदान के नामहरम रिश्तेदार निया हो और वो यही कहे कि जी बहुत साडा मुंडा बहुत दूरों आया है, तू तो साडा पुत्र है, लेकिन मेरे दोस्तों जिस चीज को अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, अल्लाह ताला की अब्दियत और बंदगी और वो रूहानियत के ताल्लुक का तकाजा यह है कि अल्लाह के कानून को न तोड़े, यानी दिल शिकनी हो जाए, दिल शिकनी को मंजूर कर ले, लेकिन दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए। बीबी अस के बुरीदी, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बीबी अस के बुरीदी व बा के पैवस्ती, जरा देख तो जालिम किससे तू रिश्ता तोड़ रहा है और किससे रिश्ता जोड़ रहा है, अल्लाह से रिश्ता तोड़कर इस नफ्सो शैतान इनसे रिश्ता तू जोड़ रहा है। बकौले दुश्मन पैमाने दोस्ती शिकस्ती, दुश्मन के कहने पर, नफ्सो शैतान के कहने पर अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ता है। जो तेरे चैन और सुकून जिनकी याद से तुझे मिलेगा, इन हसीनों से क्या सुकून मिला करके देख लेना, अपनी सारी बदमाशियां, अपनी सारी ख्वाहिशात, अपने सारे तकाजे इन लड़कों या इन औरतों के चक्कर में करके देख लिए, सिवाय जिल्लत, बेचैनियां, घबराहटें, बर्बादियों के अलावा कुछ नहीं मिला, करके देख लेना, आजमा लिया। मेरे मुर्शिद फरमाते कितना आजमाओगे, कोई वक्त होता है आजमाने का, साल, दस साल, पंद्रह, बीस साल, पच्चीस, तीस साल, कितना आजमाओगे, एक ही सांप, एक ही जहर, एक ही सुराख से बार बार कितनी मरतबा अपने को डसवाओगे, देख लिया सिवाय नामुरादी, जिल्लतें, बर्बादियां और तबाहियां, बेचैनियां, बेसुकूनी के अलावा कुछ नहीं मिला। तुमने भी मुशाहिदा करके देख लिया। फरमाया आप कितने आजमाओगे? आजमाए हुए को आजमाना, इसको अकलमंदी नहीं कहते। यह इंतहा दर्जे की हमाकत और बेवकूफी है कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना कि क्या आप क्या करें, बस अब हम और कहां जाएं। बेवकूफ है। अल्लाह को इतने प्यारे मालिक, इतने प्यारे मौला के होते हुए कैसी बातें करता है ये कि अल्लाह के, अल्लाह के अलावा कोई हमारा ठिकाना नहीं है, जबकि हमने अल्लाह को भी आजमा के देख लिया कि हमारी परेशानी, हमारी मुसीबत में उनके सिवा कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। तो रूहानियत उस कनेक्शन, उस ताल्लुक, उस रابطे का नाम है मेरे दोस्तों, जो बंदे को अल्लाह से हो, ऐसा रابطा कि हर अल्लाह ताला की रिदा और खुशी की खातिर से अपने दिल, अपने कानून, अपनी ख्वाहिशात, अपनी हसरतों को बस पांव तले रोंद दे, लेकिन अल्लाह के कानून को न तोड़े, अल्लाह की दीदार खुशी को हर लम्हा, हर सांस, हर नजर, हर ख्याल में मुकद्दम रखा है। ये रूहानियत है। लगा अल्लाह वाले जिनके कुलूब को रूहानियत का मकाम हासिल होता है, वो अल्लाह में कसम खा करके तो बादशाहों की तस्तोता जिनकी निगाहों से नीलाम होते हैं, ये बादशाहों को खातिर में नीलाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मालो दौलत वाला इनको अपने मालो दौलत से खरीद ले। शामी कबाब, बिरयानी और बर्गरों में ये बिक जाए, या हसीनों की नंगी टांग, उनकी गोरी गोरी टांग से जो है बिक जाए, ऐसा नहीं है। रूहानियत से ताल्लुक का नाम। अब ये पैदा कैसे होगा? आह, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं इसके लिए वो एक तरीका है जो जहाज उड़ाने का तरीका है। कहा हजरत वो कैसे? फरमाया जहाज के लिए तीन चीजें चाहिए। सुभान अल्लाह। नंबर एक, पायलट चाहिए। कोई जहाज बगैर पायलट के नहीं उड़ता, और पायलट भी जिंदा चाहिए। कि हमारे शेख का इंतकाल हो गया या बला फला बुजुर्ग है, उनके कब्र से जाकर फैज लेंगे कि वो हमारा फैमिली डॉक्टर था, अब वो मर गया, वो उसकी कब्र पर जाकर नुस्खा लिखवा सकते हैं। जिंदा पीर चाहिए, जिंदा शेख चाहिए, जो अली अल्लाह इंतकाल फरमा गए उनकी अजमत सर आंखों पर है। अरे हमारे यहां के कितने पायलट हैं जिनको निशान हैदर मिला है, और वो दुनिया से चले भी गए, अब जहाज उड़ नहीं रहा कि भाई क्या बात है जी, पायलट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या जी? बात यह कि वो जो पायलट है वो कब्र से फैज पहुंचाएंगे। ऐसे पायलट के ऐसे जहाज पर बैठेगा जिसका कोई पायलट ना हो? और फिर पायलट जद्दे जाना है, काबे शरीफ जाना चाहता है, तो पहले एयरलाइन का इंतखाब करता है, कौन सी एयरलाइन पे जाना है जो जद्दा जाने वाली हो, मॉस्को, वॉशिंगटन और लंदन और टोरंटो। मेरे मुर्शिद तशरीफ ले गए टोरंटो। हजरत फरमाए टोरंटो तो याद करना बहुत आसान है, दो टो के दरमियान में रन लगा दो बस टोरंटो हो गया। अब वहां तो जहाज जा रहा है, उस जहाज पर बैठे और कहते जद्दा जा, कैसे होगा भाई? यहां भी हम लोग बस को पहले देखते हैं, पूछते हैं भाई साहब ये बस मनोड़ा और किमाड़ी और टावर जाएगी कि नहीं जाएगी, पहले बस का नंबर देखते हैं, पूछते हैं, फिर उसके पास बैठते हैं। तो पहले जहां पर जिसके पास जा रहे हैं पहले उससे पूछे तो सही कि तुम्हारी मंजिल क्या है, ये जो तुम दीन का काम कर रहे हो इस दीन के काम का मकसद क्या है, तुम हमें कहां लेकर जाओगे, तुम्हारी मंजिल क्या है, और फिर जो पायलट है वो खुद भी जाते और जा चुका हो, कह जी अल्लाह वाला बनना है तो हम तुम्हें अल्लाह वाला बनाएंगे। कहा जा आप बने नहीं, लेकिन कोई अल्लाह वाला अपने मुंह से अल्लाह अपने को अल्लाह वाला नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। उससे पूछो, उस पायलट से पूछो पहले कि तुम, कोई पायलट पायलट नहीं बनता जब तक वो छोटू पायलट नहीं बनता, यानी को पायलट। पायलट बनने से पहले को पायलट बनना जरूरी है, इसका नाम है छोटू पायलट। कंडक्टर जरूरी है वो, कि पहले को पायलट है, उसके साथ ट्रेनिंग हासिल करें, उसके साथ रहे। तो जिससे दीन सीखना है पहले उससे पूछे, जनाब आपने किससे दीन सीखा है? ये बहुत आसान फॉर्मूला है, याद रख लीजिए इसको। आपको किसी से दीन सीखना है कि फला आदमी से दीन सीखे या न सीखे, तो उसका तरीका है आपने किससे दीन सीखा। आसान है बस, सबसे पहला काम यही है। क्योंकि दीन सिखाने वाले बहुत सारे मिलेंगे जी, मीडिया पर हैं कि उनका हॉल में बयान होता है, प्रोफेसर डॉक्टर्स वगैरह वगैरह कुरान शरीफ पर लेक्चर्स देंगे, वो फला होटल में उनकी सेमिनार होगा। तो उनसे पूछो कि तुमने अपनी सीमी को भी नार में दाखिल किया है कि नहीं। क्या मतलब, कोई चांदी उस वक्त खालिस सीमी कहते हैं चांदी को, और नार मैंने आग है, यानी कोई चांदी खालिस उस वक्त तक नहीं होगी जब तक उसको आग में ना डाला जाए। तुमने भी किसी अल्लाह वाले की सोबत से अपना तज़किया कराया? तुम्हारा कोई मुरब्बी है? तुम्हारा कोई शेख है? तुम्हारा कोई बड़ा है? अगर नहीं, हम खुद ही बड़े बन गए। तो मेरा मुर्शिद फरमाते जो ये कहे कि हमारा कोई बड़ा नहीं है, इसका बड़ा फिर शैतान है। जिसका कोई बड़ा नहीं होता उसका बड़ा शैतान और उसका नफ्स होता है। लिहाजा पहली चीज जो है, पायलट शेख होना चाहिए। शेख से पूछे वो किसके साथ रहा है, उसका शेख कौन है, ये एक सिलसिला है जनाब, ये उसकी डिग्री होती है। लिहाजा मेडिकल कॉलेज पढ़ने वाला, उसके पास चाहे हाउस वाइफ हो लेकिन हाउस जॉब के बगैर उसको डिग्री नहीं मिलती। वो लाख का हाउस वाइफ मेरे पास है और मैं घर में हाउस जॉब भी करता हूं। एक दोस्त ने अपने दोस्त ने कहा, यार मैंने सुना तुम अपनी बीवी से के साथ मिलकर बर्तन धोते हो। उन्होंने कहा इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है, वो भी तो मेरे साथ मिलकर रोटी पकाती है। तो हाउस वाइफ के साथ हाउस जॉब तो कर रहा है लेकिन इस हाउस जॉब पर उसको डिग्री नहीं मिलेगी, MBBS नहीं कहलाएगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP ये डिग्री नहीं लिख के लगा सकता वो अपने क्लिनिक के बाहर। क्यों? डॉक्टर के साथ नहीं रहा। तो मेडिकल पढ़ने के बावजूद डॉक्टर के साथ न रहने पर उसको डिग्री नहीं मिलती। इसी तरह याद रख ले, किताबों मेरे दोस्तों, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, किताब आदमी बनने का रास्ता बताती है, किताब आदमी बनने का रास्ता बताती है, लेकिन आदमी आदमी बनाता है। किताब से पता चलेगा कि ऐसे दीन है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन मेरे दोस्तों बनाने वाला आदमी चाहिए। किताब में लिखा रहेगा कि देखो ऐसे दीन है, ऐसे नमाज है, ऐसे सुन्नतें हैं, लेकिन जब तक वल्ला किताब कितनी पढ़ ले जब तक नहीं रहेगा। देखिए ना, अब हमें मालूम है जब हसीन औरत सामने आ जाए नजर बचानी है, किसको नहीं पता, लेकिन जरा पूछो कि जब हसीन औरत सामने आती तब क्या हाल होता है? कहा हम उस वक्त पागल बन जाते हैं। आरिफ बिल्ला बनने वाले भी पागल बिल्ला बन जाते हैं, उन हसीनों का दूध पीते। बागड़ बिल्ला उस बिल्ले को कहते हैं जो घरों में घुसकर दूध पी जाता है, उसको बागड़ बिल्ला बोलते हैं। ये सलाह कभी सुनी थी? बागड़ बिल्ला उस बिल्ले को कहते हैं जो घरों में घुसकर जो दूध होता है ना उसका पीना उसका काम होता है, वो बागड़ बिल्ला होता है। अब ये बनना चाहते हैं आरिफ बिल्ला। आरिफ बिल्ला अल्लाह वाले के मार्फत हासिल कर सकते, काम कर रहे हैं बागड़ा बिल्ला वाले। हसीनों का हराम नमक चक्कर, उनके हराम दूध पी रहे, हुस्न का उनके, तो नतीजा क्या होगा? यार बिल्ला बने। क्यों भूल जाता है कि हमें नजर बचानी चाहिए। तो याद रखना, बगैर सोहबत के, वल्ला बगैर सोहबत के वो बात नहीं होती। देखिए मुर्गी सारा साल अंडे देती है, लेकिन आप उन अंडों को मुर्गी के नीचे रख दें, बच्चे नहीं होंगे। पूछो देहातियों से जाकर। और जब मुर्गी अंडे मुर्गे से मुलाकात करती है, उसकी सोहबत में रहती है, फिर जब अंडे देती है, फिर उससे बच्चे होते हैं। क्यों जनाब? अब उस अंडों को मुर्गी के नीचे रखें 21 दिन, लेकिन अंडों को मुसलसल रखना जरूरी है। अगर मुर्गी कहे चलो आज मैं जरा क्लिफ्टन की सैर करके आऊं, कि बहुत दिन से मैंने टनाटन नहीं देखी है, या शहर में कहीं मेला लगा हुआ है, चलो मैं किसी मेले में सैर करके आऊं, बड़े दिन से हमने तारिक रोड का चक्कर नहीं लगाया, बहुत दिन हुआ हसीनों को नहीं देखा, तो चलो जरा हम हसीनों को देखकर आए। क्या है अगर हम वर्ल्ड कप क्रिकेट देख लेंगे तो अल्लाह वाले तो फिर भी बन जाएंगे हम। कि जी वो तो लाइव आ रहा है मौलाना साहब, तो उसमें लाइव हसीनाएं भी तो आ रही होती है, उनका क्या होगा जनाब? बीच में जो इश्तेहारात आ रहे हैं, वो जो बदनजरी कर रहा है, जी हम तो बहुत मुत्तकी हैं, फौरन आंखें बंद कर लेते हैं। और फिर यही वो क्रिकेटर जो अपने पीछे के मकामात पर बॉल रगड़ते हैं, क्या उसके पीछे के मकाम को देखना जायज है जहां वो बॉल रगड़ रहे होते हैं? पतलून ऐसा लिबास पहनना जिसमें नाव से घुटने तक साइज पता चले, ऐसा लिबास पहनना जायज नहीं है। यही तो वजह पतलून पहनने के मना, क्योंकि उसमें चुस्त होती है, रान का साइज और मकाम तीतर वो साइज पता चलता है। एक साहब ने मौली साहब से पूछा, मैं पैंट पहनता हूं, पतलून में मेरी नमाज हो जाएगी? मौली साहब ने कहा, हाँ तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारे पीछे वालों की नहीं होगी। तो कहते क्या हमारी मजबूरी है, तो ठीक है अगर तुम्हारी मजबूरी है तो उस मजबूरी के कुछ टाइमिंग और औकात होंगे। मान लो 9 to 5 और 9 to 5 तुम्हारी मजबूरी है ना, ऑफिस टाइमिंग, ऑफिस आवर्स के अंदर अगर मजबूरी है, तो ये क्या बात है कि तुम उसके बाद भी अल्लाह की नाफरमानी पे राजी रहते हो? अगर मान लो तुम वहां मजबूर हो अपनी मुलाजमत की वजह से, तो उसके बाद तो मजबूर नहीं हो। जी क्या करें, हमारी रिश्तेदारनियां है, हमें बिठा दिया, हम उठकर जाएंगे तो खानदान वाले बातें बनाएंगे कि ये क्या नया दीन लेकर आ गया, क्या पर्दा करो। खालाजाद बहन तो बहन होती है। एक हमारे रिश्तेदार ने कहा, मैंने कहा हाँ, तभी तुमने अपनी खालाजाद बहन से शादी की, उन्होंने शादी की है ना। मैंने कहा हाँ, बहन थी ना, तभी तुमने बहन से शादी कर ली। ऐसे अहमकाना बात, अल्लाह ताला शरीयत के हुक्म में अपनी अकल लड़ाते हैं, बेवकूफ कहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मालूम है कि ये काम बुरा है, लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि ये मालूम होने से काफी नहीं है। शरीयत का इल्म होना नेमत है, लेकिन ये इल्म होना काफी नहीं है। जब तक वो मालूम मामूल ना बने, वो इल्म अमल से ना मिले, कि डिग्री थोड़ी दिखाएगा कि मेरा इल्म इतना है। लिहाजा मालूम को नजात किस पर होगी? मालूमात पर नहीं होगी, बल्कि मामूलात पर होगी। जब अमल करेगा उस पर नजात होगी। अगर दाढ़ी का इल्म है कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, शलवार टखनों से ऊपर रखना जरूरी है, वाजिब है। हसीनों से नजर बचाना जरूरी है, लड़कों से नजर बचाना जरूरी है, मालूम है। लेकिन ये मालूम काफी नहीं है, क्योंकि एहतियात ही नहीं करता। लड़कों से नजर नहीं बचाता, औरतों से नजर नहीं बचाता, तो ये मालूमात काफी नहीं है। मामूलात चाहिए, नजर बचाने वाला। नजर बचाने का इल्म होना नहीं बचाएगा, बल्कि नजर बचाना ये बचाएगा। क्यों जना? ये इल्म होना कि नमाज पढ़नी है ये नहीं बचाएगा, बल्कि नमाज पढ़ना ये बचाएगा। अब उस मालूम को मामूल बनाने के लिए, इसलिए अल्लाह वालों की सौगंध कि जी हम क्या करें, माशरा है, खानदान है, अरे आ ऐसे अल्लाह वालों की सोहबत में रहे कि जिस तरह से वो अल्लाह वाले जमीन पर रहते हुए अपनी रूहानियत के जहाज को जमीन से उड़ाकर अर्श आजम पर ले जाते हैं, तुम भी ऐसे अल्लाह वालों के साथ रहो। उनसे सीखो कि हम मिट्टी में, मिट्टी से पैदा शुदा, मिट्टी में रहकर मिट्टी के नजर हसीनों से नजर कैसे बचाकर अपनी खाक को खालक अफलाक पर फिदा करें। कैसे बता दो कायदा, कैसे फरियाद करते हैं, ऐसी जान है कफस मैं नौ गिरफ्तारों में हूं। इसके लिए शेख चाहिए, मुरब्बी चाहिए, पायलट चाहिए हमारी रूह का, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें यह सलाहियत दी है कि हम अल्लाह वाले बन सके, हमारा अल्लाह से ऐसा ताल्लुक हो जाए। ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। लेकिन पायलट चाहिए। सहाबा के जहाजों को नबी सल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत ने सहाबी बनाया। आज पूरा पूरा सहाबा के जमाने में पूरा कुरान मजीद सीनों में था, जिनके लिखा हुआ नहीं मिलता था, कोई कहीं कुछ कहीं कुछ था। इसलिए उस जमाने में हुफाज सहाबा कम होते थे, लगा उस जमाने में जो उलमा सहाबा होते थे उनको कारी कहते थे, वो कारी कहलाते थे, उससे मुराद आलिम थे, उलमा। लेकिन वो इस्तलाह में कारी कहलाते थे। आज पूरा कुरान मजीद उम्दा से उम्दा मौजूद, बुखारी शरीफ, अहदीस मुबारक सब मौजूद, वो सहाबा में फैली हुई थी। किसी सहाबी कोई 5,364 रिवायतें पढ़ा रहा है, कोई 2,200 रिवायतें पढ़ा रहा है, कोई 1,000 के करीब, कोई उससे भी कम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु 5 रिवायतें पेश करते, ऐसे फैला हुआ। आज हम लोग उनसे ज्यादा हदीस जानते हैं, सहाबी बन सकते हैं, कहला सकते हैं। एक आलिम ने हकीम उल उम्मत से कहा कि हजरत ये आप अपने हमारे इस्लाह के लिए, तज़किये के लिए, जो कि फर्ज है, तज़किया फर्ज है, अपने दिल से गैरुल्लाह को निकालना और अल्लाह की मोहब्बत दिल में हासिल करना ये फर्ज है, इसके लिए आप अल्लाह वालों की कैद क्यों लगाते हैं, इसके लिए सोहबत की क्या जरूरत है, क्या अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर हम क्या नहीं बन सकते। हज़रत फरमाया अच्छा भाई ठीक है, आप सहाबी बन जाइए। उन्होंने कहा कि हज़रत उसके लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की जरूरत है। फरमाया अच्छा तो फिर ताबाई बन जाइए। कहा ये तो नहीं बन सकता, क्यों? कहा उसके लिए हज़रत सहाबी की सोहबत की जरूरत है। फरमाया अच्छा तो तब ताबाई बन जाइए। कहा वो भी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकते? हजरत ताबेई की सोहबत चाहिए। वो आलिम थे, कहने लगे हजरत बस बात समझ में आ गई, सोहबत के बगैर काम नहीं हो सकता। इसलिए कोई पायलट नहीं बनता जब तक पायलट की सोहबत में ना रहे, उसको ट्रेनिंग करता है, समझाता है, फिर वो पायलट बनता है। अकेले जहां नहीं उड़ाने देते, ये और छोड़िए ड्राइविंग के लिए भी शर्त है। कहते पहले बनाते क्या, हमारी कराची की जबान में कहते ना कच्चा लाइसेंस, फिर पक्का लाइसेंस बनता है। कच्चे लाइसेंस वाले के लिए जरूरी है पहले पक्के लाइसेंस वाले के साथ चलाए गाड़ी, अगर पक्के लाइसेंस वाले के बगैर निकलेगा तो चालान हो जाएगा। क्यों जनाब? जरूरी है ना। तो इसी तरह से आह मेरे दोस्तों, इल्म हासिल करना तो नेमत है, तबलीग में चिल्ले लगाना नेमत है, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर वो मालूम मालूम रहेगा, मामूल नहीं बनेगा। वरना रिश्तेदार भी उसे पर्दा तक नहीं करेगा, जो कि जरूरी है। और सोहबत ऐसी चीज है कि इल्म कम भी होता है लेकिन शेख बस ये होता है कि मेरा शेख अल्लाह वाला है, बस मेरा शेख की जो खुशी है वो अल्लाह की खुशी है। जो शेख का पायलट का इंतखाब देख लेता ना कि जद्दा ले जाने वाला है, कहा कि ये अल्लाह ताला का, ये अल्लाह वाला है, इसने अल्लाह वालों की सोहबत में रहा है, तो लादा जो ये कहेगा तो मुझे वहीं तक पहुंचाएगा। दादा शेख की खुशी है, इसलिए पायलट के इंतखाब में शेख का इंतखाब करे लेकिन जिंदा शेख हो। इसलिए मेरे शेख ने यहां तक फरमाया जब तुम्हारे शेख का इंतकाल भी हो जाए तो फौरन दूसरा शेख करो, तीन दिन तुम रो पीट लो, रो गा लो, चौथे दिन शेख की तलाश में निकल पड़ो, बगैर शेख के मत जिंदा रहो। क्योंकि जिन लोगों ने बगैर शेख के जिंदगी गुजारी, हजरत मुआशाबरुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो मेरे दादा पीर है, फरमाया वो मुस्लिह तो दूर की बात, खिलाफत याफ्ता थे, हकीम उल उम्मत के खलीफा, हकीम उल उम्मत खिलाफत कितनी छांट पटक से देते थे, हकीम उल उम्मत के खलीफा। हजरत वाला हरदोई ने फरमाया कि वो मुस्लिह तो दूर की बात, यानी किसी की इस्लाह क्या करते, खुद भी सालेह नहीं रहे, नेक नहीं रहे, और शैतान ने उनको भी, नफ्स ने उनको भी सालेह क्या साले बना दिया। इसलिए खलीफा की भी जिम्मेदारी है कि शेख पर अपना रखे कि दूसरों की इस्लाह करा जी टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी है उसकी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं आज भी अपने शेख की खिदमत में रोजाना हाजिरी देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी एक दफा लाजमी, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह और मौका दीजिए तो दो दो दफे भी हजरत के पैर दबाता हूं। आपने देखा ना पैर दबाते, शुक्र अदा करता हूं क्योंकि नफ्स नहीं मरता बगैर पैर दबाए, मिटता नहीं है। वरना कहा जी हमारे भी तो लोग हाथ चूम रहे हैं, हमारे भी तो पैर दबा रहे हैं, हम क्यों किसी के पैर दबाएं। इसी से पढ़ाई आती है, और शेख की सोहबत ऐसी चीज है, अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बड़ी चीज है। हजरत वाला जब सब यूं निगाह उठाकर देखते हैं, जो सारे बूते वो टूट के पाश पाश हो जाते हैं, वो जो सारे जरूरत है, मैं जरूरत महसूस करता हूं शेख की निगाहों की, मोहताज हूं मैं। हालांकि अल्लाह ताला का शुक्र है, हजरत की बरकत है कि कितने शहरों में बुलाया जाता हूं, कि गैर मुल्क की भी दावतें मौजूद हैं। लेकिन सच अर्ज करता हूं अपने को शेख की निगाहों का 100% मोहताज समझता हूं, बल्कि मुझे यही है कि मैं अपनी शेख की खानकाह में सबसे ज्यादा मोहताज में हूं, सबसे ज्यादा कमजोर में हूं। इसलिए जरूरत, एक तो क्या पायलट चाहिए, शेख रूहा, लेकिन शेख समझता हो उड़ाना कैसे। एक देहाती बैठा ना पहली मरता जहाज में, घबरा रहा था, अब पायलट ने एकदम रनवे पे दौड़ाया तेज रफ्तार से, तो उसके बाद जैसे ही टेक ऑफ के लिए जहाज ऊपर उठा, वो देहाती गया पायलट की जाके ठुकाई शुरू कर दी। लोगों ने बचाया, भाई क्या कर, उसको क्यों मारो। उसने कहा कि मैं पहली दफा जहाज में बैठा हूं, इतनी घबराहट परेशान हो रहा हूं, इस जालिम को देखो विल्ली मार के डरा रहा है मुझे। विल्ली मारना समझते हो ना, मुझे एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाते ना यार लोग, उसको हमारे यहां कहते हैं विल्ली मारना। उसने कहा देखो मैं पहली दफा जहाज में बैठा हूं, डर लग रहा है, और ये विल्ली मार के दिखा रहा है। और देखिए एक मजमून अल्लाह ताला ने एक सफर में अता फरमाया, दोस्त थे तो वो दोस्त एयरपोर्ट से बाहर रुखसत करने के लिए आए, अब एयरपोर्ट से अंदर चले गए, तो दुबई एयरपोर्ट से आ रहा था मैं, तो सब लोग आए। उसके बाद जब अंदर आया तो दिल में एक अजीब बात पैदा, फौरन अल्लाह ताला ने हजरत की बरकत से एक मजमून अता फरमाया कि देखो बाहर वाले लोग हैं वो बाहर तक पहुंचा के चले जाते हैं, अगर किसी ने उस दुबई के अंदर कोई जुर्म किया हो तो अब वो वहां पकड़ा जाएगा एयरपोर्ट पे, वो भाग नहीं सकता। बैंक से पैसा लिया हो, गाड़ी के कोई चालान वगैरह किए हो, जाने नहीं देते, पकड़ लेते, और बाहर वालों को पता ही नहीं। अब बाहर वाले मुंतजर हैं कि अब ये वहां जाएगा, वहां से रब्ता होगा, और وہ پتا چلا وہیں سے جیل میں چلا گیا. ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ ایئرپورٹ پر جدا کیا, رخصت ہوئے اور وہاں سے غائب, برسوں گزر گئے خبر ہی نہیں ہے. میں نے کہا بس سوچ لو یہی آخرت کی منزل ہے کہ سارے ہمارے دوست احباب اور رشتے دار قبر میں ہمیں دفن کر کے چلے جائیں گے. اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی وہاں کی منزل سے آصف کے ساتھ گزر جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے, کسٹم والے پوچھیں گے, مر رب کا تمہارا رب کون ہے, ماں دینو کا تمہارا دین کیا ہے, اور من حضر رجل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی یہ شخص کون ہے. اگر اس نے اللہ کی مرضی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ اس کا سب سے کلیئر ہو جائے گا, اور اگر شریعت و سنت کا مذاق گناہ کر کے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا وہاں جوتے پڑ لیں گے اور وہاں حیران پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں حضرت تو بڑے نیک اور ان کا عالم یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بدماشیاں کرتے ہیں, ننگی فلمیں ننگی تصویریں دیکھتے ہیں, موبائل میں بدماشیاں کرتے ہیں, حسینوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں اور پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جی کتنے نیک ہے, چہرے پر داڑھی بھی ہے, سجدے کا نشان ماتھے سے لے کر ناک تک کھینچا ہوا ہے, ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ اطلاعاتی کام کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ان پر جرم لدے ہوئے کہ لڑکوں کے ساتھ کیا حرکتیں کرتے ہیں. لوگ تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ نیک صاحب نیک ہیں, حافظ صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, دیندار ہیں, مولوی صاحب ہیں, لیکن معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر گناہ پر کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. پھر وہاں جا کر قسم میں پکڑے جائیں گے, کون بچائے گا وہاں پر. اب وہاں سمجھ رہے ہیں کہ واہ واہ جی فلاں وہ تو جنت میں مزے, پتا چلا وہاں تو وہ پکڑے گئے, جوتے پڑ لے ان کو. اس لیے جب رہے تو عافیت سے رہے, کوئی جرم نہ کرے تاکہ جب ادھر چلے جائے تو عافیت کے ساتھ آگے امیگریشن کلیئر ہو, کسٹم سے کلیئر, اب مزے سے وہ بیٹھے, اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کور بن گئی. اللہ اکبر. اس لیے میرے دوستوں اللہ والوں کی صحبت کونو مع صادقین کا حکم اس لیے کہ تم متقی نہیں بن سکتے اتقوا اللہ کے بعد. یہ جو حکم ہے یہ اتقوا اللہ کے بعد سکھانا کونو مع صادقین, تم اللہ والے نہیں بن سکتے, متقی نہیں بن سکتے جب تک تم اللہ والوں کی قلم نہیں لو گے, ان کی صحبتوں میں نہیں بیٹھو گے, ان کے پاس رہو, ان کے ساتھ رہو, تم بھی متقی بن جاؤ گے. اگر عبادتوں سے متقی بنتے تو شیطان نے کتنی عبادت کی. لہذا عبادت نعمت ہے, لیکن میرے دوستوں عبادت کے ساتھ ضروری ہے عبادت کی حفاظت بھی, ورنہ اگر یہی ہوتا تو متقی مسجد میں ہم باخدا ہیں, مسجد سے باہر عورت سامنے آتی ہے سب بھول جاتے, بس اسٹاپ, ریلوے, ریل میں, بس میں کنیکشن سے دیکھ رہے, سب سمجھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب تو کتنے لاوال ہیں اور پتہ نہیں حضرت کی حرکتیں کیا ہیں, جوتے کھانے والی حرکتیں. اس لیے شیخ کے انتخاب میں کونو مع صادقین ہے, رہو اس کے ساتھ, اس کی جلوت اور خلوت کو دیکھو. جب تم اپنے دل کو اس کے دل سے ملاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا اس کے دل کا تعلق معلہ تمہارے دل میں منتقل ہو جائے گا اور ایسا لگے گا کہ جیسے تپتی ہوئی ریت سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گیا. اس کے پاس بیٹھ کر معلوم ہوگا کہ اللہ کے قرب کی گرمی, دیکھیں نا آگ جلاتی ہے, دنیا کی آگ جلاتی ہے اور اللہ کی محبت کی آگ جلا بخشتی ہے, اسے حیات میں حیات بخشے جناب, مردہ دلوں کو حیات ملتی ہے, مردہ دلوں کو نظر سے ملی, مردہ دلوں کو حیات ابد. یہ واقعہ خود میرا اپنا چشمدید ہوا. مولانا منصور صاحب کا شعر ہے, ہمارے پیر بھائی محدث ہے, کہ میں اپنے شیخ کی صحبت میں کیا ہوا, مردہ دلوں کو ملی حیات, نظر سے ملی مردہ دلوں کو حیات ابد. یہ واقعہ خود میرا اپنا چشم دید ہوا. کیا فرماتے ہیں, عالم ہے محدث ہے, کہ نگاہوں کی چوری کو ہلکا سمجھتے یوں ہی نور تقوی فنا کرتے رہتے ہیں, اگر شاہ اختر کی صحبت نہ ملتی تو ہم سب نگاہوں کا زنا کرتے رہتے. محدث ہو کر اتنا اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر یہ شعر کہہ دیا. کیوں, اللہ پیارا ہے, جب اللہ پیارا ہوتا ہے عزت پیاری نہیں رہتی, وہ اللہ کو مقدم رکھتا ہے کہ جی نظر بچائیں گے ہمارا دل ٹوٹے گا, پردہ کریں گے تو خاندان والے کیا بولیں گے, हमारी ऑफिस की सहेलियां क्या कहेंगी, हमारे सोशल नेटवर्क के जितने फ्रेंड्स हमने ऐड किए हैं वो क्या बोलेंगे कि अभी तो हमने अपनी प्रोफाइल अपडेट की है पिक्चर्स के साथ, हराम तस्वीरें डाल रहे, खुद भी हराम काम, दूसरों को भी मुबतला करता है। कि जी जरा सोशल नेटवर्क जरा वाइड होना चाहिए, इसलिए हमने हर सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट पर अपने प्रोफाइल ऐड कर दिए कि कहीं ना कहीं तो सेटिंग हो जाएगी। तो एक काम क्या हो गया, किसी अल्लाह वाले को अपने सर पर रखे, अल्लाह वालों को साया बड़ी रहमत है, बड़ी नेमत है, आह हा शेख की सोहबत बहुत बड़ी रहमत, बड़ी नेमत है मेरे दोस्त। और फिर शेख रस्मी ना हो, यानी रस्मन शेख को ना लगे हाथ में हाथ लिया बैत ली, बस उसके बाद पूछे ही नहीं कहां तू कहां मैं, हजरत में बहुत बिजी रहता हूं, बहुत मसरूफ रहता हूं, टाइम नहीं मिलता। तो भाई ठीक है, शेख भी कहेगा तो नहीं कि आप आज नहीं आते, या वो तो नहीं पूछेगा। हाँ जाली पी रहे हो गया तो मामला है, वो पूछेगा इसलिए कि उसको पता है कि नजराना नहीं आ रहा, कितने महीने से जो है वो इसने चार्जेस जमा नहीं कराए, पीर चार्जेस, वहां तो मुर्गी लाजमी पहुंचाना जरूरी होती है, वो तो पूछेगा। लेकिन आ हमने जिन मशायख को देखा, आ अपने शेख को कभी इस पर नजर, जेब पर नहीं दिल पर नजर रखी, अगर पूछा भी तो इसलिए पूछा कि शेख को वो दर्द है, जैसे बच्चा मां से दूर रहता है तो मां बच्चे से पूछती है बेटा तू कहां था। आ हमने अपने शेख को ऐसा देखा, ऐसा ममता, ऐसी मोहब्बत, ऐसी शफकत है, उस शफकत के मारे पूछे कहां थे भाई तुम, और उसमें भी मां को बेटी की क्यों फिक्र होती है कि पता है बेटे ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मालूम है कि बाप को मालूम है, मां को मालूम है कि ये भूख का कितना कच्चा है, शेख को मालूम है कि ये तकवा का कितना कच्चा है। ये जालिम जब दूर रहेगा हसीदों के चक्कर में फंस जाएगा, लौंडों के चक्कर में फंस जाएगा, मालूम है शेख को, इसलिए वो अपनी मोहब्बत शफकत से कि ये किसी गुनाह की गटर लाइन में ना घुसे, इसलिए वो शफकत की वजह से सब पूछता है, पूछता अच्छा इनको भी कोई मतलब होगा तभी ये पूछ रहे हैं। वो अपनी शफकत और मोहब्बत से मजबूर है कि ये जालिम किसी गटर लाइन में जाकर ना गिर जाए, इसलिए वो उसे पूछता है। और वो बेवकूफ नादान, जैसे बच्चा नादान होता है, कहता बाप को बस मुसीबत है, हाँ अब कब आओ, कहां कब आओगे, कोई टाइम कायम नहीं है, मेरे बाप का तो बस यही काम है, टेलीफोन पर हमारे पीछे पड़ा रहा। आ जब तू बाप बनेगा तब पता चलेगा कि बेटे का दर्द क्या होता है, जब औलाद होती है ना तब पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला, किस तरह खून के आंसू रुलाते हैं, हमने कैसे अपने माँ बाप के साथ किया होगा। वो दर्द नहीं है जालिम, अभी तो समझ नहीं सकता कि शेख के दिल में दर्द क्या होता है, वो कैसे मुरीद पर फिदा होता है, और उसकी इस्लाह के लिए किस दर्जा आहोजारी और तन्हाइयों में दुआएं करना और उसके लिए बेचैन रहना, ये उस दर्द को समझता नहीं है। नादान बेवकूफ है ना, सब बच्चा नादान होता ना, ये भी ऐसे ही है। तो एक काम हो गया शेख हो पायलट, दूसरा काम यह कि स्टीम जमा करें। अब स्टीम कैसे जमा होगी, जिक्र से, सुन्नत पर अमल करने से, इबादत से, इल्म पढ़ रहा है पढ़ाना, इससे स्टीम बनती है, तबलीग में जा रहे से स्टीम बनती है। तो स्टीम पैदा करने की जरूरत है, जिक्र का मामूल करें। लहरा जो जिक्र नहीं करता रूहानी तौर पर नया फसड्डी रहता है, टाइम नहीं मिलता, अजीब बात है टाइम नहीं मिलता, और चैटिंग के लिए बैठे हुए घंटों घंटों, जिक्र का वक्त नहीं है, और वेब कैम पे बैठे हुए, और वैसे टाइम नहीं मिलता, नस बहुत चक्करबाजी करता है ना, अभी यार आ जाए, यारों से लगे हुए बाजारों में घूम रहे, वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन जिक्र का टाइम नहीं है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जो जिक्र का नागा करता है वो दर हकीकत रूह को अपनी फाका कराता है, नूर नहीं जमा होता है इसके पास, दादा जब जहाज में पेट्रोल नहीं होगा उड़ेगा कैसे भाई? पायलट कितना ही आप दुनिया का नंबर वन पायलट बिठा दो, अवार्ड याफ्ता, अब वो पेट्रोल ही नहीं है कैसे उड़ाएगा जहाज? दादा शेख भी चाहता है मुरीद को, असल में पायलट बैठकर वो कांटा चेक करता है, फ्यूल टैंक देखता है फ्यूल कितना है, वो कहता है इतना तो फ्यूल ही नहीं है, क्योंकि जहाज उड़ाने के लिए, क्योंकि जहाज के मेरे मुर्शिद फरमाते जितने अज्जा हैं जो मटेरियल है वो सब जमीनी है, लगा उसको अपने जमीन मरकज को छोड़ने के लिए जबरदस्त पेट्रोल चाहिए। लगा जिस वक्त जहाज पेट्रोल हाई क्वालिटी का होता है सबसे महंगा, और जिस वक्त जहाज जमीन को छोड़ता है टेक ऑफ करता है उस वक्त सबसे ज्यादा पेट्रोल लगता है, फिर उसके बाद जब हवा में उड़ जाता है ना फिर इतना पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, फिर तो सारे इंजन की भी जरूरत नहीं होती, उसको इंजन और पूरी तेज रफ्तार से दौड़ता है, कैसे एकदम जहाज एकदम दौड़ता है, लहदा क्यों जमीन छोड़ने के लिए? तो उसी तरह से हसीनों से अपनी जान छुड़ाने के लिए, ऐसा नहीं जाल भी रहे मुड़ मुड़ के भी देख रहे। और शेख ने कहा कि अपना मोबाइल की सिम चेंज करो और हसीन को, ताकि वो तुम्हें फोन ना करे, मोबाइल की सिम चेंज करके हसीन को फोन करके कह रहे हैं कि अब मैंने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया, अब खबरदार मुझे फोन मत करना। तो मीर कितने सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं और उसको एसएमएस करें, खबरदार जो तुमने मुझे एसएमएस किया, अब मेरा तुम्हारा रब्ता खत्म, मुझे शेख ने मना किया मैं रब्ता नहीं रखूंगा, अब मुझे तुम फोन नहीं करना, मैंने सिम बदल दिया नंबर बदल दिया। अब आप बताइए ऐसे भी अकलमंद लोग दुनिया में हैं और फोन हसीना को फोन करके कह रहे हैं देखो अब मुझे प्लीज फोन नहीं करना क्योंकि अब मैं अल्लाह वाला बनना चाहता हूं, मैं अपने शेख के पास जाता हूं। शेख ने मना क्या था? तो कहा अगर आप अल्लाह वाला बनना चाहते तो मुझे क्यों नहीं बनाते आप, मैं भी अल्लाह वाला बनना चाहती हूं, आप मुझे फोन करके शेख के मलफूसात सुनाया करें, मैं भी अल्लाह वाली बनूंगी, मैं भी शरई पर्दा करूंगी, आप बताइए, ग्लव्स पहनूंगी, मोजे भी पहनूंगी, आंखें भी नजर नहीं आएंगी, अब वो अल्लाह वाले और ये अल्लाह वाले, वो अल्लाह वाले और ये अल्लाह वाले, अब शेख की मजलिस में जाएंगे उसको मोटरसाइकिल पर बिठा के, ये अल्लाह वाले और वो अल्लाह वाले, अब दोनों चूंकि शरीयत और सुन्नत के पाबंद है, अब इसका नाम है शरई इश्क। तो शरई वीडियो आई ना, शरई बैंक आया, तो अब एक भाई देखो ना, एक शरीयत पर चलने वाला शरीयत पर चलने वाली जब दोनों में इश्क होगा तो उसको क्या बोलेंगे, शरई इश्क हुआ ये भी, वो सर से लेकर पांव तक पुरके में पन कुछ नजर नहीं आ रहा और ये सर से लेकर पांव तक शरीयत और सुन्नत के मुताबिक, सुभान अल्लाह, और जिसने विलादत के मैसेज भेजते हैं अब तो अल्लाह वाले बन गए ना। अस पाक का महीना मुबारक हो, रजब के कुंडे मुबारक हो, शाबान की ये रात बहुत मुबारक रात है। एक हसीना ने अपने माशूक को एसएमएस किया कि देखो आज बड़ी रात है, 15 शाबान की रात, बड़ी मुबारक रात है, फैसले होते हैं हम और तुम अल्लाह से, बहुत तौबा करें, गुनाह मांगे अल्लाह तुम, मैंने जो गुनाह हमें माफ करे तुम भी माफ करें और आज से हम नई जिंदगी का आगाज करें, अल्लाह वाली जिंदगी का। ऐसे नफ्स शैतान धोखा देते हैं, इसलिए तो शेख चलेंगे। देखिए ना, अब किसी आदमी के मुंह पर कालक लगी उसे पता चलेगा, आईना बताएगा, शेख आईना होता है, सुभान वाह वाह, शेख आईना होता है कि वो हमें बताता है देखो ये तुम्हारे अंदर कमी है, इसलिए कहा शेख की बात का इंकार मत करो, वो जो कह रहे वो ठीक बोल रहा है, समझते समझते मुरीद को देर लगती है, वो शेख की नफ्स की चक्करबाजी नहीं समझ सकता, और वो अल्लाह वाले जो इस राह से गुजरकर बालिगे मंजिल हो चुके हैं वो जानते हैं इस राह के कि कहां पर स्पीड ब्रेकर है और कहां पर खड्डे हैं। देखिए ना, जो रोजाना एक सड़क पर जाते हैं उसको पता है खड्डे आएगा, यहां से निकालना है, इस तरफ से निकाल लो, खुसन कराची में ये खड्डा आएगा यहां पर, उसको यहां से निकालना है, फला जगह से यूं निकालना है, यही सड़क पर नहीं जाओ, उस सड़क से जाओ, क्यों जनाब हालात खराब है फला सड़क पर, कोई बात नहीं दूसरे रास्ते से निकल आएंगे, सब तरकीबें मालूम होती है, آنے جانے شیخ بھی ایسے ہی وہ نفس وش اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی اس برکت سے اس کو جو یہ علم معرفت عطا فرماتے ہیں نفس اور شیطان کی باریکیوں کو، پھر وہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو اپنے دوستوں کو شارٹ کٹ سے لے جانا ہے. لیکن وہ شارٹ کٹ شریعت و سنت سے ہٹ کے نہیں ہے، یاد رکھنا کہ بس یہ شارٹ کٹ کرو، ایسا نہیں ہے کہ شعبان کی رات جاگ لو ربیع الاول منانو بس اللہ والے ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ جھنڈے لگا لو بجلی چرا کے لائٹیں لگا لو اور لکھ کے لگا دو کہ آپ سرکار ہمارے گھر کب تشریف لائیں گے بس اللہ والے بن گئے، ایسا نہیں ہے. شریعت و سنت کی پابندی ہے بھائی، اعمال محبت ہے کہ نہیں ہے. یہ نے شادی کرتا ہے، بیوی نے کہا برگر کھلاؤ پیزا کھلاؤ، کہا نکاح نامے میں تو نہیں لکھا کہ تمہیں پیزا بھی کھلانا، لو یہ کیا بات ہوئی، یہ تو شادی میں خود ہی شامل ہے. ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا ابا شادی میں کتنا خرچہ آتا ہے، اس نے کہا ڈاؤن پیمنٹ کے طور پہ 50,000 روپیہ، پھر ہر مہینہ ادائیگی کرنی پڑتی ہے مرتے دم تک. میرے پیارے دوست، ذکر کا اہتمام کریں، جو ذکر نہیں کرتا اس کی روح نہایت کمزور ہوتی ہے. شیخ کے پاس جب نہیں ہوگا تو ذکر اس کو شیخ تک لے کر آئے گا. کم دیکھو نا، اتنا تو پیٹرول رکھے، کتنا پیٹرول ہو نا، موٹر سائیکل کو لٹایا تو کم سے کم پیٹرول پمپ تک تو پہنچ جائے گی، اتنا تو رکھے کہ کہیں کچھ لٹا کے تو شیخ کے پاس پہنچ جائے. اب پتہ چلا نہیں آئے زمانہ گزر گیا. تمام ممالک مل کر ایک زبردست میزائل پر ریسرچ کی، اب وہ اس میزائل کو چھوڑ اڑانا تھا تو وہاں کے جو بڑے بڑے سائنسدان، انہوں نے بٹن دبایا میزائل اٹھا دھڑ کر کے بیٹھ گیا. امریکہ کے سائنسدانوں کا ہٹو ہم کرتے، انہوں نے کچھ کیا، تھوڑی دیر میں بٹن دبایا اٹھا پھر بیٹھ گیا. جرمن جاپان سب آئے، وہاں پاکستانی بھی موجود تھے تو پاکستانی سے کہا، آشا نے کہا سر مجھے بھی چھوڑو، تھرڈ ورلڈ کنٹری والے تمہیں کیا پتا، یہاں ہم لوگ اتنی ریسرچ میں کتنی آگے جا رہے ہیں کہ مخلوق کو کتنا بیوقوف بنائے کہ چاند پر پہنچ گئے اور کوئی چاند وان پر نہیں گئے، اور بیوقوف بنایا کیماڑی سے لے جا کر منوڑا پہ چھوڑ دیا اور کہہ رہے چاند پر گئے، اور پھر وہاں سے لے کر بھی کیا ہے مٹی، کہتے ہیں وہاں سے مٹی لے کر آئے. ارے ہمیں بتاتے، ہمارے ڈمپر والے دوست ہیں، میں کتنے ڈمپر ڈلوا دیتا، اتنا لاکھوں کروڑوں روپے لگانے کی کیا ضرورت تھی بھائی، یہ راکٹ گاڑی لے کر آ جاتا. اس کے پاکستانی جب سب تھک گئے، پاکستانی سر مجھے بھی موقع دیں، اچھا بھائی چلو. اب وہ پاکستانی اس نے جو تھے خدمت والے، انہوں نے کہا دیکھو میزائل کو لٹاؤ، انہیں لٹا دی. اس کے بعد اس نے جو ہے کہا اس کو الٹے ہاتھ پہ یوں ایسے کرو، میزائل کو یوں کیا، اس نے تھوڑا سا تپ تپایا اور اس کے بعد کہا اس کو کھڑا کرو، کھڑا کیا، اس نے کہا سر بٹن دبائیے. اب جیسے بٹن دبائے میزائل اڑ گیا. اس نے کہا سر یہ کیسے، ہم لوگ اتنی ریسرچ کے تھے، اتنی ایڈوانس اور اتنی ترقی یافتہ، اتنی آگے، اور تم تھرڈ ورلڈ کے یہ کیسے کام تم نے کیا، یہ تمہیں ریسرچ ملی کیسے. اس نے کہا سر جی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہے نا پڑھا کرتے تھے، یونیورسٹی جاتے تھے موٹر سائیکل پر، کبھی موٹر سائیکل پہ ٹرائل ختم ہو جاتا، ہم موٹر سائیکل لٹا کے اسٹارٹ کر کے لے چلتے، یہ وہی ریسرچ ہے. آہ میرے دوستوں، ذکر نہ کرنے والا یہ بہت ناقص رہتا ہے. تو دوسرا کام کیا ہے، ذکر کا اہتمام، کیونکہ زبردست نور چاہیے، ایسا نور ہو سر سے لے کر پاؤں تک نور میں ڈوباؤ، زبان سے بھی ذکر ہو، آنکھیں بھی اس کی ذاکر ہوں کہ کسی حسین کو نہ دیکھے، کان بھی ذاکر ہو کہ غیبت نہ سنے، گانا نہ سنے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ ذاکر ہو. کیوں؟ کیونکہ پورے جسم کو اڑانا ہے، روحانیت کیوں، وہ قلب و جان کو اللہ سے چپکانا ہے، عرش اعظم پر فاصلہ بہت طویل ہے، زبردست نور چاہیے. تو دو کام ہو گئے، اور تیسرا کام یہ، آہ میرے مرشد فرماتے اس پیٹرول کی ٹنکی کی حفاظت کرو کہ نور، ذکر جو پیٹرول نکل نہ جائے، نور ضائع نہ ہو جائے. ایسا نہیں حسینوں کو دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون ہماری گاڑی میں آ کر بیٹھی، کہ کون بیٹھا، یا دل میں خیالات پرانے پکا رہے ہیں. رسول بھی کہتا ہے شیطان بری بات ہے، بد نظری نہیں کیا کروں.
یار تمہارے فرسٹ ایئر میں کون تمہارے ساتھ تھی؟ تم جب جہاز پر جا رہے تھے تمہارے برابر کون تھی؟ وہ ایئر ہوسٹس کتنی اچھی تھی، کسی تم سے مسکرا کر پہل گئی، سر واٹ یو وانٹ، یو وانٹ مور پلیز.
گال سے گال قریب کر کے تم سے کہہ رہی تھی، ہائے یار وہ تو واقعی مجھ پر فدا تھی. کیا تھا اگر میں اسے تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیتا؟ اس وقت ہیلو کیا نہیں، اب ہائی ہائی کر رہے، وہ تو بالکل وہ تو تیار تھی بس سب وے برگر پر جانے کے لیے. سب وے کا آؤٹ لیٹ ہے نا، وہاں پہ ملتا بھی ہے، لے جاتے ہیں لڑکی کو، پوچھتے ہیں آدھے فٹ کا لوگی ایک فٹ کا. وہاں آؤٹ لیٹ پہ ایسے ہی ملتا ہے نا، 6 انچ کا اور 12 انچ کا ایسے ہی ملتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی ہے. یہاں پہ وہاں پوچھ رہے ہیں، تو ایک لڑکا لڑکی جا رہے تھے نا، تو اچانک سنسان جگہ پر گاڑی رکی، تو لڑکے نے دانت نکال گئے، پیٹرول ختم ہو گیا. اس نے کہا مجھے معلوم تھا. اس نے اپنے باسکٹ سے ایک تھرموس نکالا، اس نے کہا دیکھو انتظام تھا پہلے، اس میں کیا ہے، چائے یا کافی؟ کہا نہیں اس میں پیٹرول ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو، آ جب نور کیا، میرے مرشد فرماتا ہے اگر کسی کو اللہ والا دیکھنا ہے مسجد پہ مت دیکھو، ممبر پہ مت دیکھو، جب وہ بیان کر رہے تب مت دیکھو، ملتزم پر مت دیکھو، روزہ مبارک پر مت دیکھو، اجتماع میں جا کر وہ آنسو سے رو رہا ہے اس کو مت دیکھو، سڑکوں پر دیکھو کہ وہ کتنا اللہ والا ہے، بس حساب پر دیکھو کہ وہ کیسا داخود ہے، وہاں پتا چلے گا یہ سر اللہ والا ہے کہ نہیں. خاندان میں برادری میں شادی ہو رہی ہے، وہاں پتا چلے گا کہ یہ اللہ والا ہے کہ نہیں. ساری خالہزاد بہنوں سے کہہ رہے ہیں آپ کیسی ہیں، آپ تو بہت پہلے سے کچھ ویک ہو گئی ہیں. وہ کہتی ہاں بس میں کیا بتاؤں، بس جب سے میری شادی ہوئی نا 5 بچے ہوئے، تو مسلسل کسی سال میں نے کوئی، ہر سال مجھے ماڈل لانا ہوتا تھا، اس لیے ایسی ہو گئی. اب اس کو دیکھ بھی رہے سر سے لے کر پاؤں تک، آہ کیا خلاصت کی بات ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے قلوب اس ارون انوارات الہیہ سے محروم ہونے کی وجہ ہے کہ جو عبادت کے ذریعے سے، شیخ کی صحبتوں سے، ذکر و تلاوت سے، نماز روزے سے، تبلیغ سے، حج و عمرہ سے جو ہم نور جمع کرتے ہیں، بد نظری کر کے وہ نور ضائع کر دیتے ہیں. شلوار ٹخنوں سے نیچے آہ وہ نور ضائع ہو جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے ہمیں کامل نہ ہونے کی وجہ ہے. زمانہ گزر گیا، ابھی تک ہم وہی کہ کولو کا بیل کہ بس ایک چکر کے دن گھومے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں ملتا. کیسے ملے گا سکون؟ اللہ کی نافرمانی میں مبتلاؤں کا سکون مل سکتا ہے؟ مچھلی پانی میں بھی رہے، لیکن گرمی کے زمانے میں سورج کی گرمی سے جب مچھلی پانی کا ظاہری سطح، اوپر والا حصہ، سرفیس جب وہ گرم ہو جاتا ہے، تو مچھلی جو ہے دریا کی گہرائی اور سمندر کی گہرائی میں چلے جاتی ہے. آ میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں ایسا مواقع ہو، حسینوں کا حسن ہو یا گناہوں کے مواقع ہو، وہاں پر اس اللہ والے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ذکر میں سر سے لے کر پاؤں تک اتنا ڈوب جائے کہ گناہوں کی گرمی سے دور ہو جائے. دادا باب اس کے لیے ٹھہرنا جائز نہیں ہے. اور یہ کیا بات ہے، یہ وہاں بیٹھ گیا. اس لیے ضرورت ہے کہ وہ جو ذکر سے، عبادات سے انوارات جو جمع ہوئے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. نظر سے، کان سے، زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے. تو یہ 3 کام کریں. نمبر 1، اپنے اوپر کسی کو شیخ رکھے. یاد رکھنا کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہے جس سے اپنے اوپر شیخ نہ رکھا. جن سے اللہ نے دین کے کام لیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کسی مربی کو رکھا، بغیر شیخ کے نہیں رہے. اور نمبر 2 یہ کہ ذکر کا اہتمام کرے، سنتوں کا اہتمام کرے. یہ تھوڑی کہ یاروں کے ساتھ ہے تو پلیٹ صاف کر رہے ہیں، اور تنہائی کے اندر پلیٹ صاف ہی نہیں کرتے، ہاتھ بھی نہیں دھوتے، ویسے ہی بیٹھ جاتے. سنت کا اہتمام ہی نہیں ہے، ویسے سنت سنت ہے. صبح اٹھے شلوار ٹخنوں سے نیچے، گناہ میں مبتلا، 2 کام. اور 3 کام یہ کرے، دیکھیں نا کتنا زمانہ ہو گیا، ابھی تک ہم سے فجر کی نماز قابو نہیں آئی، اور ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک بد نظری سے نہیں بچے. دیکھیں نا جو ایتھلیٹ، جو रेस होती है उसमें कहलाती है फर्स्ट लाइन, जहां से रेस की इब्तदा होती है, फिर उसके बाद दौड़ता है। क्यों जनाब? अभी तो फर्स्ट लाइन पर भी नहीं आए हम लोग। क्यों? गुनाहों की वजह से। क्या अभी रेस में? अभी तो अल्लाह वालों की, अल्लाह वाला बनने के बाद एक पूरा अल्लाह के कुर्ब का, अल्लाह की मोहब्बत का एक मुल्क है मेरे दोस्तों, गैर महदूद अजमत वाला, गैर महदूद बाउंड्री है उसकी। अभी तो फर्स्ट लाइन में भी नहीं आए। क्यों? अभी तो गुनाहों की आदत है, अल्लाह वालों की सोबत से उन आदतों को छुड़ाए थे। जब तक हम 100% गुनाह नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, उस मुल्क में एंट्री हमें नहीं मिल सकती, अल्लाह के कुर्ब और दोस्ती और विलायत के मुल्क में। जब एंट्री मिलेगी फिर उसके बाद मनाजिल अलग है। अभी तो हम यही घूम रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी जानों को अपना कुर्ब, अपना ताल्लुक, अपनी मोहब्बत का दर्जा अजीम अता फरमाए, हर गुनाह से नाफरमानी से बचाए। किसी अल्लाह वाले को अपने सर पर रखे मेरे दोस्तों, आफियत सीख ले। कोई अल्लाह वाला नहीं बना जब तक उसने किसी अल्लाह वाले की सोबत ना उठाई। कोई आलिम नहीं मेरे दोस्तों, आलिम मंजिल तो रहेगा, बालिगे मंजिल नहीं होगा जब तक किसी अल्लाह वाले का दामन नहीं पकड़ेगा। किसी दिन की शोबे में जाए लेकिन किसी अल्लाह वाले को अपने सर के ऊपर बड़ा रखे, क्योंकि नफ्स की चक्करबाजी है, चालबाजी है, बहुत अच्छी है, ऐसे मुब्तला करता है कि बस। अल्लाह ताला अपने करम से हम सबको अपना कुर्ब खास, ताल्लुक खास और अपनी मोहब्बत और अपनी मार्फत का की अजीम दौलत नसीब फरमाए। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। ए करीम मालिक, आप बड़े, आपका नाम बड़ा, जितना बड़ा आपका नाम है उतनी बड़ी बड़ी मेहरबानी हम सब पर फरमा। या अल्लाह हम सबको अल्लाह वाला बना दीजिए। या अल्लाह हमारी रूह को बाले फरमा कर अपने कुर्ब की मंजिल अता फरमा दीजिए। या अल्लाह किसी ऐसे अल्लाह वाले की सोबत अता फरमा कि जिनकी सोबत में अल्लाह हमारी इस्लाह लिखी हो। या अल्लाह उससे हमारी इस्लाह कामिल फरमा, तज़किया हमारे नफूस का फरमा, हमारे गंदे अखलाक को अच्छे अखलाक से तब्दील फरमा दे। अपना कुर्ब खास, ताल्लुक खास हमारी जानों को नसीब फरमा दे। और या अल्लाह हर गुनाह नाफरमानी से बचाकर हम सबको या अल्लाह 100% अपना फरमाबरदार बना दे। सूरत और सीरत अपना फरमाबरदार बना, हमारे कामों को आसान फरमा। या अल्लाह।